ಸಾಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತೋ ಜಾ ಪ್ರಭು ಜೀ ಬಾ ರೇ ಥೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಕ್ತೋ ಸೇ ನಿವೇದನ ಹೈ ಶೋರ್ ನಾ ಮಚಾಯೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಅವತಾರ ಹೈ ವೋ, ಜೋ ಕಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೆ ಭಾವ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ತೋ ಪಹಲೇ ಹಮ್ ಏಕ ಭಜನ್ ಗಾಯೆಂಗೆ, ಯೇ ಭಜನ್ ಆಪ್ ಹಮಾರೇ ಪೀಚ್ ಪೀಚೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೀಜಿಯೆ. ಗೌರಾಂಗೇರ ತೋಟಿ ಪದ ಜಾರ ಧನ ಸಂಪದ, ಸೆ ಜಾನೆ ಬಾಕತೆ ರಸ ಸಾರ, ಸೆ ಜಾನೆ ಬಾಕತೆ ರಸ ಸಾರ, ಗೌರಾಂಗೇರ ಮಧುರ ಲೀಲಾ, ಜಾರ ಕರ್ಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಲಾ, ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೋತಾ, ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೊ ತಾರ, ಜಯ ಗೌರಾಂಗೇರ ನಾಮ ಲಯೆ, ತಾರ ಹೋಯ ಪ್ರೇಮ ಉದಯ,
ತಾರೆ ಮೋಯ ಜಾಯ ಬಲಿಹಾರಿ, ತಾರೆ ಮೋಯ ತಾರೆ ಮೋಯ ಜಾಯ ಗೌರಾಂಗ ಗುಣೇತೆ ಜೋರೆ, ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ತಾರೆ ಸ್ಫುರೆ, ಸೆ ಜಾನಾ ಭಕತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸೆ ಜಾನಾ ಭಕತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗೌರಾಂಗೇರ ಸಂಗೀ ಗಣ, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೋರಿ ಮಾನೆ, ಸೆ ಜಾಯ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಸುತ ಪಾ, ಸೆ ಜಾಯ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಸುತ ಪಾಶಾ, देवा जाने चिंता मणि तार हो ब्रज भूमि वास तार हो ब्रज भूमि तार हो ब्रज राधा माधव গৃহে বাবা নেতে থাকে হাগরাঙ্গা বোল ডাকে গৃহে বাবা নেতে থাকে হাগরাঙ্গা বোলে ডাকে নরোতম মাগে তার সাঙ্গা নারো তাম মাগে তার সাঙ্গা জয় গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই গরাং নেতাই গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই গরাং নেতাই গরাং নেতাই জয় গরাং নেতাই Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol.
हरे कृष्णा. तो जो भक्त लोग खड़े हैं यहाँ पर उनसे निवेदन है वो बैठ जाएं. अगर आप दर्शन अभिलाषी हैं तो बाहर से लाइन लगाएं, अंदर से कोई भी लाइन नहीं लगेगा. हॉल के अंदर कोई भी भक्त खड़े नहीं रहेंगे, हॉल के अंदर कोई भी भक्त खड़े नहीं रहेंगे. जिनको दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना, वो बाहर लाइन लगाइए और फिर पहले वाले दरवाजे से लाइन से अंदर आइए. आपको दर्शन कीजिए, आशीर्वाद मिलेगा, फिर आप जा सकते हैं. इन हॉल के अंदर किसी को खड़े नहीं रहना है. जितने भी प्रभु जीज हैं, माता जीज, हॉल के बाहर आप लाइन लगाएं, हॉल के अंदर खड़े नहीं रहना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. और जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, कितनों के पास हैं? हैं? आपके पास नहीं है? जिनके पास भी हैं उनसे अनुरोध है, सारे मोबाइल फोन्स को ऑफ कीजिए या उसको साइलेंट कीजिए. कथा के बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग कहते नहीं होना चाहिए? तो सबका मोबाइल फोन ऑफ हो और साइलेंट हो, बीच में एक भी मोबाइल नहीं बजेगा. हरे कृष्ण.
जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद. जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद. ओम ज्ञानतमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं. वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन् वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आने वाली 21 तारीख को बहुत ही महान उत्सव गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की। और हर महोत्सव की असली शुरुआत है कि भगवान के विषय में हम श्रवण कीर्तन करें। अक्सर प्रभुपाद जी कहते थे कि लोग ये तो मानते हैं गॉड इज ग्रेट। आप अमेरिका में जाएंगे वहां US डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है गॉड इज ग्रेट। लेकिन गॉड इज ग्रेट तो ठीक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितने ग्रेट है ये कोई नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, चलो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कैसे, क्या क्या उनकी महानता है, कैसे उनकी महिमा है। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा और उतना हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आज से 3 दिन 17, 18, 19 हम 3 दिन गौरांग महाप्रभु की कथा का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। सभी अपने गुरुवृंद से आचार्यवृंद से सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करते हुए मैं अपने शुद्धिकरण के लिए आप सबके दिव्य आनंद के लिए इस गौरांग कथा का मोचन कर सकूं। हरे कृष्णा। तो कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा गला थोड़ा खराब है तो आवाज थोड़ी जोर से ना निकले तो ये मत समझना कि प्रभु जी आज उत्साहित नहीं लग रहे, उत्साह पूरा है। कल ही मैं नवदीप मंडल से आया हूँ परिक्रमा करके, तो वहाँ कुछ फीवर हो गया था, गला बैठ गया, तो जोर से बोलने का प्रयास भी करूँगा तो बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन आप ये मत समझना कि उत्साह में कमी है, आप सब में उत्साह है पूरा सुनने का। और ये भी समझना कि बीच बीच में बोलते बोलते मेरा गला रुक जाए तो ऐसा भी मत समझ लेना गलती से कि शायद प्रभु जी एक्सटेसी में आ गए। तो ना एक्सटेसी है ना उत्साह में कमी है, सामान्य भाव है। लेकिन आप लोग पूरे उत्साहित रहिए, अगर उत्साहित हैं तो हृदय से बोलिए गौरांगा गौरांगा गौरांगा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये भजन जो हमने गाया नरोत्तम दास ठाकुर जी का, इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। श्री गौरांग देव के श्री चरण युगल ही जिनका धन एवं संपत्ति है वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। गौरांग तुटी पदे जार धन संपदे से जाने भक्ति रस सार। भगवान श्री कृष्ण गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं राज विद्या राज गोह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो कृष्ण भक्ति है राज गोह्यम है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, छिपी हुई है, राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने गौरांग महाप्रभु के चरण युगल, जिसका धन और संपत्ति है, जिसने गौरांग महाप्रभु के चरणों की शरण ले ली, वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। जिसके कानों में गौरांग देव की मधुर लीलाएं प्रवेश करती हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। तो आज गौरांग महाप्रभु की हम लीलाएं सुनेंगे अगले 3 दिन में, तो हृदय क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जो गौरांग देव का नाम लेता है, जे गौरांगेर नाम लए, क्या होगा उसके साथ? अभी आपने क्या बोला था, क्या नाम लिया था आपने, जोर से बोलिए। आपने ये नाम ले लिया तो क्या होगा मालूम है, तार है प्रेम उदय, उसके हृदय में क्या हो जाएगा? भगवत प्रेम उदित हो जाता है। और जो लोग ऐसा नाम ले रहे हैं गौरांग महाप्रभु का, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी हो जाता हूं। बलिहारी जानते हैं आप कैसे करते हैं ना, यूं करते हैं ना सब। तो वो आपके चरणों को अपने सर पे लगा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या बोला, हाँ मैं आपके साथ नहीं बोल सकता, क्या बोला, गौरांगा। हाँ, जो गौरांग के गुणों में रमण करता हो उसके अंदर ही श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं, वही भक्ति का अधिकारी है। श्री गौर सुंदर के, गौर चंद्र के संगियों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति वजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है। तथा गौर मंडल की भूमि को जो चिंतामणि के सदृश आपकृत मानता है वह ब्रज भूमि में वास करता है। आप में से कितने लोग नवदीप मंडल गए हुए हैं? नवदीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो जो नवदीप धाम की महिमा को जानता है वो ब्रज भूमि में वास करता है। जो गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूब जाता है वह श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है, वह ग्रह में रहे या वन में। बहुत अच्छा बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, ग्रहे ठाको वने ठाको। चाहे आप संन्यास आश्रम में हैं, वैराग्य आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में हैं, क्या करें, घर में रहें या वन में रहें, यदि वह गौर सुंदर के प्रेम रस सागर में डूब कर क्या बोले, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें हृदय में प्रेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें भक्ति, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा कोई है यहां पे? अगर कोई नहीं है ऐसा तो खुल के बोलिए। जो ये बोलेगा, कहकर पुकारता है तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। इतना सुंदर ये भजन लिखा नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो चैतन्य महाप्रभु की कथाएं बहुत ही मधुर हैं। एक बारी परम पूजनीय जयप्रदा का स्वामी महाराज हमारे मंदिर में आए। जयप्रदा का स्वामी महाराज आप जानते हैं प्रभुपाद जी के अग्रणी शिष्यों में से हैं और पिछले 10 वर्षों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत ही वो ब्रेन स्ट्रोक उनको हो गया था, आप में से कुछ लोग जानते ही हैं। तो हमारे मंदिर में आए और ऐसी अवस्था में पूरे विश्व में वो भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो कमरे में मैं अकेला था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि महाराज आपकी ऐसी अवस्था में भी आपके अंदर प्रचार का इतना उत्साह, हमारा टेम्परेचर 98.4 से 99 हो जाए हम गिर जाते हैं, और आपको शरीर में इतनी तकलीफें फिर भी आपके अंदर वही उत्साह बना हुआ, क्या कारण है इसका? तो महाराज ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि जो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हैं वो इतनी मधुर हैं, उसमें इतना अमृत है कि मेरे पास और कोई विकल्प बचता ही नहीं है, समझे आप। तो हम जीवन की कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हमारा आकर्षण भगवान की लीलाओं के प्रति हो जाता है, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के प्रति, तो हमारा जीवन सफल है, यही जीवन की सार्थकता है। और जो ये उत्सव आते हैं जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा उत्सव, इनका मुख्य उद्देश्य यही है, भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान अपने अवतरण से अपनी कथाओं का श्रवण कीर्तन स्थापित करके जाते हैं, जैसे आने वाले कई युगों तक जो भक्त लोग हैं उसका श्रवण कीर्तन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं सुनी लिए चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे चैतन्य संग अवतरे। जिसने चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुन लिया उसको भक्ति का फल प्राप्त होता है और जन्म जन्म वो चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करता है। वेद गोप्य ऐ सकल महाचित्र कथा, इहार श्रवण कृष्ण मिलये सर्वथा। चैतन्य महाप्रभु के अवतार को वेद गोप्य कहा गया है, इतनी आसानी से पता नहीं चलता, महाप्रभु छन्न अवतार थे। लेकिन इनके कोई महाचित्र की कथा को सुनता है तो निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो पिछले साल हमने कथा शुरू की थी चैतन्य महाप्रभु के विषय में। मुख्यतः तीन ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, चैतन्य मंगल जिसको लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा, और चैतन्य भागवत जिसको वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वृंदावन दास ठाकुर जी की चैतन्य भागवत से कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का ज्यादा विस्तार से वर्णन किया है और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही मधुर भाषा में। गांव गांव में बंगाल में चैतन्य भागवत पढ़ी जाती है। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाओं के विषय में है, उसमें सिद्धांत भी है और लीलाएं भी हैं, लेकिन चैतन्य भागवत मुख्यतः लीलाओं से भरा हुआ है। तो पिछले साल हमने दो तीन दिनों में जो चर्चा की थी कैसे निमाई पंडित का अवतरण होता है, कैसे निमाई पंडित अवतरित होकर संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते हैं, कैसे निमाई पंडित बाल लीलाएं करते हैं, बहुत ही हास्यप्रद लीलाएं हैं, उद्दंड शिरोमणि बहुत शरारती होते हैं, और कैसे निमाई पंडित बड़े पूरे नवद्वीप में एक पंडित के रूप से जाने जाते हैं। अभी इस लीला को आगे बढ़ाते हैं, इस लीला को बोलते हैं विद्या विलास लीला। भगवान विद्या रस का आस्वादन कर रहे हैं और भगवान दिखा रहे हैं बहुत ही घमंडी उद्धतेर शिरोमणि, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही घमंडी। इस संसार में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो और बहुत ही घमंडी हो, कौन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक आए उसको काट देंगे, वो कोई जाना चाहेगा इनके पास? कोई भी नहीं जाना चाहेगा, नहीं, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। हम देखेंगे इस लीला में हालांकि वो ऐसा आचरण कर रहे हैं लेकिन सबको बहुत प्रिय है, ये भगवान की खूबी है। तो आने आने तीन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि कैसे भगवान इस विद्या विलास लीला से अपनी भक्ति की लीला में प्रवेश करते हैं, और भगवान ये दिखाएंगे कि इस जड़ विद्या में कुछ नहीं रखा, अंततः जो है वो भक्ति ही सब कुछ है। लेकिन पहले वो दिखा रहे हैं कैसे वो नवदीप में इतने बड़े पंडित हैं। तो आइए इसी में चर्चा करें। ये आदि खंड के 12वें अध्याय की वर्णन है। हमारे साथ साथ बोलिए, सब इकट्ठे बोलिए, व्याकरण शास्त्र सबे विद्या आदान, भट्टाचार्य प्रत्ययो नाहि कतृण ज्ञान। हालांकि जो निमाई पंडित थे ये व्याकरण शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते थे। व्याकरण शास्त्र जो है वैदिक शास्त्रों की पढ़ाई में शुरुआत मानी जाती है, ग्रामर स्टार्टिंग है, उसके बाद कई बड़ी बड़ी बातें आते हैं, न्याय है, अलंकार है इत्यादि। हालांकि वो व्याकरण पढ़ाते थे लेकिन जो बड़े बड़े पंडित होते थे भट्टाचार्य मिश्र इत्यादि, उनको वो घास के तिनके के समान समझते थे, उनके आगे कुछ भी नहीं थे, कोई भी बड़े बड़े पंडित उनके आगे टिक नहीं पाते थे। स्वभाव अनुनंदे करे नगर ब्राह्मण सहति परम भाग्यवंत शिष्य। और पूरे नवद्वीप में निमाई पंडित एक शेर की तरह चलते थे, पूरे सुंदर घुंघराले बाल, लंबा 7 फीट का उनका शरीर और चंद्र के समान चेहरा, ऊर्ध्वपुंडरक तिलक लगाया हुआ और पीताम्बर वस्त्र डाले हुए, हाथों में बड़े बड़े शास्त्र और पीछे 50-60 उनके विद्यार्थी, ये उनका ऐश्वर्य होता था। और हाथ आगे पीछे घुमाते हुए चलते थे पूरे नवद्वीप में, तो बड़े भाग्यवान ऐसे शिष्य थे। सिंधु सदा सेविता प्रभु रख लेवर त्रिभुवन ने अद्वितीय मदन सुंदर। सिंधु सुता, सिंधु सुता कौन है? सिंधु समुद्र की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी के द्वारा सेवित प्रभु र क्लेवर, उनका जो क्लेवर है शरीर है कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है। त्रिभुवन ने अद्वितीय मदन सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय ऐसा कोई रूप नहीं है, मदन सुंदर, मदन होता है काम, एकदम सुंदर है। तो इतना सुंदर उनका रूप, लेकिन कोई भी उनके सामने आता था उसको पकड़ लेते थे, एक बारी मुकुंद उनके पार्षद थे, उनके सामने से आ रहे थे। ओ मुकुंद यहां पर आओ, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? उनका हाथ पकड़ लिया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही जाओ। मुकुंद ने सोचा बहुत तड़ी दिखाते हैं ये है? बहुत घमंड दिखाते हैं, आज मैं भी दिखा दूंगा मेरे को कितना ज्ञान है। बोले निमाई ठीक है, आज हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे नहीं, व्याकरण तो बच्चों का खेल है, मैं अलंकार पढ़ रहा हूं, अलंकार पर चर्चा करेंगे। निमाई पढ़े मतलब कोई बात नहीं, अलंकार की बात कर लेते हैं, सुनाओ कुछ अलंकार के विषय में। तो मुकुंद को जो सबसे कठिन कविता आती थी वो उन्होंने सुनाई। बोले बताओ इसमें क्या दोष है? बोला सारा दोषों से ही भरा हुआ है ये तो। और निमाई पंडित ने एक के करके सारे दोष गिना दिए। मुकुंद जी ने तभी नीचे गिरे, उनके चरणों से धूल सर पे लगाई। निमाई ने बोला कोई बात नहीं, लगता थके हुए हो, घर जाओ, कल दोबारा बात करेंगे। मुकुंद सोचने लगे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर ये कृष्ण भक्त बन जाए तो मैं इसके संग के लिए हमेशा लवाजित रहूंगा। ये कहकर चुपचाप बेचारे चले गए। फिर आगे गए निमाई तो सामने से देखा गदाधर पंडित आ रहे हैं। ओ गदाधर, वो गदाधर ने बोले अरे कहां से आ गए? फिर उनको जबरदस्ती से पकड़ लिया। गदाधर आज छोड़ के नहीं जा सकते, बोलो कुछ प्रश्न पूछूं आपसे। गदाधर ने बोला बोलो क्या पूछना है? बोले क्या सीख रहे हो तुम? न्याय, चलो न्याय की बात करते हैं। तो गदाधर ने बोला पूछो प्रश्न। निमाई ने पूछा बोलो मुक्ति क्या होती है? गदाधर पंडित जी ने जो सीखा था शास्त्रों से, मुक्ति का अर्थ है आत्यंतिक दुखों का नाश। बोला बिल्कुल बेकार, ये कुछ नहीं होता आत्यंतिक दुखों का नाश, मुक्ति का अर्थ है विष्णु के चरणों को प्राप्त करना। और उसके ऊपर कई उन्होंने शास्त्र कोट कर दिए। गदाधर पंडित ने बोला कब छुट्टी मिलेगी मुझे यहां से, मैं वापिस जाऊं? बोला जाओ गदाधर, दोबारा पढ़ के आओ, फिर बात करेंगे। ठीक है मैं जाता हूं। इस तरह सब उनसे दूर भागते थे और निमाई अपने सभी छात्रों के साथ जाते थे, गंगा के तट पे बैठ जाते थे। और गंगा के तट पे बीच में निमाई बैठे, चारों तरफ से उनके छात्रों ने उनको घेर रखा है। और शाम को कुछ वैष्णव भी वहां पे आते थे और वैष्णव देखते थे निमाई को और उनकी बातें सुनते थे, तो उनको हर्ष भी होता था और दुख भी होता था। वे आपस में बात करते थे के हाँ बोले है ना रूपा है ना विद्या जा, ना बाजी ले कृष्ण ने के रूप का। बोले क्या है ये, है ना, इतना सुंदर रूप, इतनी अच्छी विद्या, लेकिन कोई कृष्ण को नहीं भज रहा तो क्या है, किसका उपकार करेगा? ना अपना लाभ कर पा रहा है ना किसी का लाभ कर पा रहा है। तो वैष्णव के अंदर ये कंपैशन, ये करुणा की भावना होती है। इस संसार में हम कितना भी अच्छा रूप धारण क्यों ना कर लें, इस संसार की बड़ी से बड़ी विद्या भी क्यों ना ग्रहण कर लें, अगर हम कृष्ण के भजन में नहीं लगे हैं तो सब व्यर्थ है। वैसे है शास्त्र में बताया गया है जैसे मृत शरीर को सजाया जा रहा है, कोई लाभ ही नहीं है इसका। तो वैष्णव को लगता था इतना सुंदर बालक, इतना ज्ञानी बालक, लेकिन कृष्ण से विमुख है, कैसे होगा? तो हमारी जो भी सुंदरता है, जो भी ज्ञान है, वो वास्तविकता में कृष्ण भक्ति ही है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा देते देते उनके सामने एक बहुत सुंदर युवती आई और उनको जब उन्होंने माला पकड़ाई, बोले वो वेरी ब्यूटीफुल, है ना, योर नेम इज रुक्मणी देवी दासी। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, ट्राई टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आल्सो, है ना। तो माता जी आई भी थी हमारे मंदिर में, है ना, रुक्मणी माता जी, और उन्होंने खुद ये बात सुनाई थी, एनेक्डोट बताया था कि प्रभुपाद जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे आंतरिक रूप से सुंदर बनना है, और यही हम सबके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्य अर्थ यही है कि हमें आंतरिक रूप से सुंदर बनाया जाए। ये एक ट्रिमिंग सेंटर है, हम लोग ब्यूटी सैलून्स में जाते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये ब्यूटी सैलून है जो हमें आंतरिक रूप से सुंदर बनाता है, हमारे हृदय को सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने का अर्थ है क्या, मतलब हुआ आंतरिक रूप से सुंदर होने का? क्या मतलब हुआ है? मन के भक्ति की तरह शुद्धि। हाँ, शुद्धि क्या मतलब हुआ? हृदय में प्रेम हो। प्रेम कैसे मालूम चलेगा? प्रेम है भगवान के नाम का जप करेंगे। हाँ, अच्छा, अच्छे वैष्णव गुणों को विकसित करके, वेरी गुड। और चरणों को दिल में उतारना है। कैसे? दिल में कैसे उतरते हैं चरण? भक्ति मतलब क्या? वैराग्य। देखिए, बड़ी सरल सी बात है, लेकिन कितने हमारे वो है। सबसे अच्छी बात है हृदय की सुंदरता है, हृदय भरा होना चाहिए सेवा की भावना से, है ना। प्रेम मतलब क्या है? सेवा की भावना। प्रभुपाद ने सीधा बताया, सेवा की भावना से भरा हुआ हृदय, तभी हृदय सुंदर होगा। हम जानते हैं रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और कृष्णकंडा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। तो सुंदर कांड में हीरो कौन है, और इसका सुंदर कांड नाम क्यों रखा गया? सेवा की भावना से। क्यों? जो हनुमान जी के हृदय में सेवा की भावना थी, वैसी सेवा की भावना हमारे में होनी चाहिए। हनुमान जी जब भी सेवा के बारे में सुनते थे तो उत्साहित हो जाते थे, उछलते थे। सेवा का मौका मिला, है ना। सेवा के बारे में उत्साहित रहते थे। मालूम चला जी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो पूरा पर्वत उठा के ले चलो, उत्साहित। तो मालूम चला लंका में गए हैं, भगवान ने संदेश लेके भेजा है, तो बोले अब कल ये संदेश तो दे दिया, अब क्या करूं, कुछ और करके जाऊं, चलो कुछ और छानबीन करके जाता हूं, रावण से मिल के आता हूं। रावण से मिलने से पहले रावण की लंका में सबसे जो सुंदर सृष्टि है उसका नाश करता हूं। रावण की लंका में सबसे सुंदर चीज कौन सी थी? अशोक वाटिका। धूमधाम मचा दी वहां पे, तोड़फोड़ कर दी। रावण ने अपने एक पुत्र को भेजा, बोला एक और सेवा का मौका, और छलने लगे। और हनुमान जी के अंदर सेवा का मौका आता था, हनुमान जी रोज उत्साहित हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, है ना। हम अपने आप को देखें, जब हमारे पर सेवा आती है तो मारे वो हो, मुझे क्यों पकड़ा, मैं ही दिखता हूँ क्या हर बारी, ये तो शोषण हो रहा है मेरा, है ना। हाँ, मुदर करके चलो उसको दे दो, उसको दे दो, है ना। तो ये मालूम चल जाएगा हमारा हृदय कितना सुंदर है। तो इसीलिए यही पूरे जीवन का लक्ष्य है कि अपना हृदय सेवा की भावना से भरा हो। और इसी ढंग से ज्ञान, जो भी ज्ञान है सब कुछ भगवान के, उसके लिए सुंदरता के लिए। आजकल देखते हैं, आजकल ऐसे कुछ परिवार हैं जिसमें दादा दादी मामा मम्मी पापा बच्चे सारे के सारे जिम जाते हैं। मतलब कि पूरे परिवार के लिए जिम जाना एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, सच्ची में। जिम जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोग हेल्थ कॉन्शियस होने की जगह ब्यूटी कॉन्शियस ज्यादा है कि गुड लुकिंग हो मैं। हेल्थ कॉन्शियस होना गलत बात नहीं है, लेकिन लुक कॉन्शियस, मैं कैसे दिख रहा हूं, तो इससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। यही वो बता रहे हैं, किसी का भी उपकार होने वाला नहीं है, किसी का भी उपकार होने वाला नहीं है जब तक हम कृष्ण की ओर नहीं होंगे। तो इसलिए सबको बड़ा दुख होता था, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, काश ये कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाता। क्या कह रहे हैं? सब ये बोलो ना भाई, ओहा ने देखिया, फांकी जिज्ञा सार भाई, आए पलाइया। सब बोले इसको, कोई भी जिसको भी ये देख लेता है उसको छोड़ता नहीं है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है, और सब लोग इसे दूर भागते हैं। के हा बोले देखा हेले, ना देने आड़िया, महादानी प्राय ये ना राखे ना धरे। किसी ने बोला ये ऐसा जिद्दी व्यक्ति है, कोई इसके सामने आ जाए जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है, जैसे कोई टैक्स कलेक्टर हो, जाने नहीं दूंगा पहले मेरे से बात करके जाओ। के हा बोले ब्राह्मण रे शक्तिया मानुषी, कौन महापुरुष वाये हाये है ना। मुझे जो भी कहो ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ तो शक्तियां हैं। यद्यपि निरंतर बाखाने न फांके, तथापि संतोष बड़ा पाओ इहा। इसका सबूत ये है कि हालांकि ये निरंतर उल्टी सीधी बहस करता रहता है, लेकिन तब भी सब लोगों को इससे मिलकर बड़ा संतोष मिलता है। आपको ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जबरदस्ती आपको बेइज्जती करे, आपको अच्छा लगेगा? लेकिन ऐसा व्यक्ति है सबका अपमान भी करता है लेकिन सबको बड़ा संतोष भी मिलता है, इसलिए ये कोई अमनुष्य है। मनुष्य रे ए मन पांडित्य देखे नाई, कृष्ण ना भजे न सब ए दुख। बड़े दुख कर रहे हैं सब। आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, गंगा का तट है, एक ग्रुप में तो निमाई पंडित बैठे हैं, अपने आसपास चारों तरफ से उनके छात्र हैं, और थोड़ी सी दूर पे एक वैष्णवों का समूह बैठा है और दूर से उनको देख रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इतना पांडित्य है लेकिन कृष्ण में नहीं जुड़ा। सबको बड़ा दुख हो रहा है। फिर बोले अन्य अन्य सब साधे न सब प्रति सबे बेला इहा हो का कृष्ण। सब एक दूसरे से बोले भाई क्या करो, सब निमाई को आशीर्वाद दो है? सब निमाई को आशीर्वाद दो कि कृष्ण के पति इसका प्रेम हो जाए। सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इनको आशीर्वाद दो भाई, प्लीज सब इनको आशीर्वाद दो, इतना ज्ञानी इतना सुंदर बालक है, भगवान से विमुख है, इनको सब आशीर्वाद दो। दंडवत हाय सबे पड़ी ला गंगारे सर भागवत में मेले आशीर्वाद। सब ने दंडवत प्रणाम कर दिया गंगा जी को और सब बोल रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये निमाई जो है क्या बन जाए, भक्त बन जाए। हे नकारा कृष्ण जगाने तेर नंदन तार रसे माता होई छाड़ी अन्य। कि हे गंगा देवी जो जगन्नाथ जी का पुत्र है ये कृष्ण निमाई, इसका मन कृष्ण को छोड़कर और कहीं ना जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं सब। निरावादी प्रेमा भावे भाजो का तो मारे हे न संग कृष्ण देहा मा सब कारे। बिल्कुल निरंतर ऐसा भक्त बने कि हमेशा कृष्ण का भजन करता रहे और हमें क्या हो इसका हमेशा संग प्राप्त होता रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। क्या प्रार्थना की उन्होंने, किनका मन हमेशा और हमें इसका संग। अंतर्यामी प्रभु चित जाने न सबा शिवा सादी देख लिए करे नम। भगवान तो सब जानते हैं है ना, अंतर्यामी है, सब समझ गए कि मेरे लिए लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए जो वरिष्ठ वैष्णव होते थे शिवा सादी उनको देखकर नमस्कार करते थे। भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करे लाया भक्त आशीर्वाद से कृष्णा भक्त। बहुत सुंदर प्रयार है। भक्त लोग आशीर्वाद दे रहे हैं निमाई पंडित को और भगवान भी क्या कर रहे हैं, भक्तों के आशीर्वाद को अपने सर पे ले रहे हैं। ये भगवान भी अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं, भगवान मजाक नहीं उड़ा रहे। अरे अरे मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हो, अपनी औकात तो देखो। नहीं, भगवान भी उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं, सर पे ले रहे हैं, और भक्त आशीर्वाद से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ये बात समझ में आ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। अभी हम मायापुर में थे तो हमारे बहुत पुराने मित्र मुझे मिले, 20 साल से हम जानते हैं दूसरे को, तो ऐसे बातचीत होने लगी तो कहने लगे प्रभु 20 साल हो गए मुझे, अब मैं जब मायापुर में आया हूँ यहाँ सेटल हुआ हूँ, जब करने जब सुबह बैठता हूँ तो पंच तत्व की कृपा से अब मुझे ये साक्षात्कार हो गया है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि बिना भक्तों की कृपा के मैं जप नहीं कर सकता। मैंने पूरा विश्वास है प्रभु, अब इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भक्त मिलता है उससे मैं अच्छे से अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करता हूँ। बोले क्या हुआ, बोले पिछले कुछ दिनों में ही मैंने एक भक्त को खो दिया, 52 साल के वो थे, मेरे साथ कहीं थे, तो मैं सोचा ये तो अपने साथ कहीं हैं, कभी भी घर में बुला लूंगा इनको प्रसाद के लिए, तो अपने साथ कहीं है, साधारण आचार विचार, ये तो अपने साथ का ही व्यक्ति क्या है इसमें, कोई खास नहीं है, कोई बाहर से आता है उसको हम थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, कोई थोड़ा वरिष्ठ होता है उसको थोड़ा और स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ये अपने साथ का रोज उठता बैठता है क्या है, ठीक है, जिसको अचानक हार्ट फेल हो गया, शरीर छोड़ दिया, अब मैं सोच रहा हूं कहां मिलेगा वो मुझे, गया मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए, कहते बस बहुत दुख हो रहा है। और तब से मैंने ठान लिया किसी को साधारण नहीं मानना है ना। एक एक भक्त का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कीमती है और ये भक्ति का गूढ़ रहस्य है। यही भक्ति में, ज्ञान में और योग में अंतर है। ज्ञानी और योगी आशीर्वाद पर निर्भर नहीं करते, वो अपने तपस्या पे, अपने बल पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो भक्त है, चाहे वो जिसके पास जितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितने ही उसके पास तपस्या क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आशीर्वाद पर ही निर्भर करता है। भक्ति केवल कृपा पर ही निर्भर करती है। हमारी भक्ति का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो भक्तों का आशीर्वाद ही है ना। आप एक बड़ी सुंदर से गाड़ी ले आए है ना, कौन सी बढ़िया गाड़ी चल रही है आजकल सबसे महंगी, BMW है, ऑडी है, और भी जो बेस्ट होता है, बेस्ट मॉडल आप ले आए, नहीं गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है तो क्या फायदा। इस ढंग से बड़ा सुंदर आपने ज्ञान, सारे शास्त्र याद कर लिए, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, सुबह उठ के जल्दी जल्दी माला कर लेते हैं, बहुत सब कुछ तप करते हैं, निर्जल एकादशी रख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के आशीर्वाद की कीमत को नहीं समझ रहे, तो गाड़ी वैसे ही है, सुंदर गाड़ी चलेगी नहीं, भक्ति की गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसलिए ये भगवान कह रहे हैं, भक्तों के आशीर्वाद को भगवान अपने सर पे लगा रहे हैं। और शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्तों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जो जीव कृष्ण भक्ति से बिल्कुल विमुख है, जो कृष्ण भक्ति को अवॉइड कर रहा है कई जन्मों से, वो भी कृष्ण भक्ति के प्रति उन्मुख हो जाता है। तो इसलिए कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर दे, बस हमारा जीवन सफल है ना। शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कहा आप केवल 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं आपको भगवत धाम वापिस ले जाऊंगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। इससे पूर्व हमारी परंपरा में किसी आचार्य ने इतनी बड़ी छूट नहीं दी। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज तो ये कहते थे जो 64 माला नहीं कर रहा, चाहे वो गृहस्थ है या ब्रह्मचारी, वो पतित है, प्रभुपाद जी बोला 16 माला करो मैं ले जाऊंगा। कैसे संभव है? ये प्रभुपाद जी का विशेष आशीर्वाद है, इसका हम सही ढंग से पालन करेंगे, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को रिकमेंड करेंगे और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज आगे गुरु परंपरा में रिकमेंड करेंगे, तो एक गुरु परंपरा हमारे लिए प्रार्थना करती है, तब जाके हमारा केस ऊपर सुनवाई होती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए हमारी भक्ति में जो कुछ भी चल रहा है अदृश्य रूप से, वो सब आशीर्वाद से ही चल रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन फॉल्स ईगो के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण हम सोच सकते हैं मैं कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन चल रहा है वास्तव में सब कुछ भक्तों के आशीर्वाद से। इसलिए इस बात को हम समझ लें और यही बात समझ में आ जाए, यही राज विद्या राज गोयम है कि हमारी भक्ति केवल भक्तों के आशीर्वाद से चलती है। और भक्तों को कभी इंच टेप से नापना नहीं चाहिए, 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 6 महीने पुराना, ये पता नहीं आत्मा सनातन है, कौन कब से भक्ति करते हुए आ रहा है। हर भक्त से, चाहे जूनियर सीनियर इक्वल, सबसे हम कृपा ले सकते हैं, सबसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और महाप्रभु तो स्वयं भगवान है और भक्त लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके भी आशीर्वाद को भगवान ने अपने सर पे लिया। जैसे हम देखते हैं कई कथाएं हैं, रामानुजाचार्य जी ने जब देखा एक व्यक्ति को कैसे एक वैश्या से आसक्त है, तो उस व्यक्ति से पूछा धनुर्दास से कि क्यों रंगनाथ जी का प्रोसेशन चल रहा है श्रीरंगम में और सबके बीच में आपको शर्म नहीं आती, निर्लज हो इतने आप, एक स्त्री के मुख की ओर इतनी देखी आ रहे हो। तो बोले क्या करूं, स्त्री की आंखें इतनी सुंदर है। बोला बड़ा प्रैक्टिकल बात किया है, जो सुंदर चीजें मैं देखूंगा ही। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं आपको इससे सुंदर वस्तु दिखाऊं। हाँ दिखा दो, मैं उससे आकर्षित हो जाऊंगा। बोले शाम को आना रंगनाथ जी के मंदिर में। और उनको मंदिर में बुलाने से पहले रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ जी के पास जाके प्रार्थना की, एक बद जीव आपकी शरण में आएगा, इसको अपने प्रति आकर्षित कर लीजिए। और जब वो व्यक्ति आया और रामानुजाचार्य जी ने गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से हमें भगवान के दर्शन होते हैं, बोले देखो उनको। और जब उस व्यक्ति ने देखा और भगवान की आंखों को देखा, अचंभित हो गया, अरे इतनी सुंदरता, तो उस वैश्या की सुंदरता को पूरा भूल गया। इसलिए हम अपने प्रयास हम जो भी करते हैं भक्ति में, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर हम प्रभुपाद जी के हृदय को प्रसन्न कर दें, बस यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या प्रभुपाद जी के आदेश हैं हमारे लिए, हमारा जीवन बनना चाहिए, उनके हृदय को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वो हृदय प्रसन्न हो गया, उन्होंने फाइल क्लियर कर दी, तो निश्चित है भगवत धाम जाना। उनके हृदय को प्रसन्न नहीं किया, बोले हम हीरो हैं, हम कुछ ना कुछ उछल कूद करके पहुंच जाएंगे, असंभव है। तो ये महाप्रभु बहुत सुंदर हमें शिक्षा दे रहे हैं। ए मत ठाकुर सबार चित हरे, हे नही ये जाना अपेक्षा नहीं। इस प्रकार से निमाई पंडित ने सबके हृदय को हर लिया। नवदीप में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था जो निमाई से आकर्षित ना हुआ हो। देवा से के यारे प्रभु करे न संभाष, बंदी प्राय है ये ना परे प्रेम फा। जिससे एक बारी भी निमाई मिल जाते थे, वो निमाई से प्रेम बंधन में फंस जाता था, ऐसा आकर्षण था उनमें। एक बार भी मिल जाते थे, एक बार भी बात हो गई, निमाई के चक्कर में वो फंस गए। जैसे रूप गोस्वामी जी नहीं बोलते, कह रहे भैया वृंदावन मत जाना, वृंदावन जाना तो वंशीवट पे मत जाना, अगर वंशीवट जाना तो वहां पे वो जो काले रंग का लड़का खड़ा होगा त्रिभंग रूप में बंसी बजाते हुए, उसकी तरफ तो बिल्कुल मत देखना, अगर देख लिया तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, घर बार छूट जाएगा, संसार टूट फूट जाएगा। अगर ऐसा चाहते हो फिर देख लेना। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? अरे वाह, भगवान के सामने बोल रहे हैं आप तो, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहने का तरीका है, यानी कि वो इतने आकर्षक है। इसी प्रकार से निमाई पंडित से कोई एक बार भी मिल लेता था तो उसका जीवन बदल जाता था, वो भगवान से आकर्षित हो जाता था। भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर भी यही लक्षण होते हैं। एक बारी भक्ति सिद्धांत सवेश ठाकुर महाराज आसाम में जा रहे थे, तो आसाम में जा रहे थे तो एक बैलगाड़ी में बैठ के उन्होंने कहे किसी के साथ, तो बैलगाड़ी में बैठे थे तो एक और गांव का लड़का बैठा था, तो भक्ति सिद्धांत सवेश ठाकुर महाराज ने उस गांव के छोटे बच्चे के साथ ऐसी बातचीत शुरू कर दी। छोटे बालक से आप क्या बातचीत करोगे, साधारण बातें शुरू की। उसके बाद जब उनकी गंतव्य स्थान आया, भक्ति सिद्धांत सवेश ठाकुर महाराज अलग चला गया, वो लड़का अलग चला गया। लेकिन इस छोटी सी मुलाकात से उस बालक पर इतना असर पड़ा कि उस बालक ने घर जाके ऐलान किया कि मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित कर रहा हूं। भक्ति सिद्धांत सवेश ठाकुर महाराज ने कोई फिलॉसफी नहीं दी थी, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कुछ नहीं, साधारण बातचीत। वो उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपना जीवन मठ में आके समर्पित कर दिया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जय। और बाद में जाके उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया, वो बने परम पूजनीय आश्रम स्वामी महाराज भक्ति मठ के। तो एक बारी मिलने से ऐसा प्रभाव होता है। शिला प्रभुपाद जी भी एक बारी अपने शिष्यों के साथ कहीं फ्लाइट में जा रहे थे और प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद को कुछ खाने के लिए मूढ़ी दिया, है ना, तो प्रभुपाद मूढ़ी खा रहे थे, तभी वहाँ पे एक एयर होस्टेस आई और पता नहीं क्या उसने दिखाया, प्रभुपाद के मूढ़ी से ही अपना उठा के उसे मूढ़ी खा ली। शिष्यों को बड़ा गुस्सा आया, क्या है, बदतमीजी की हद है, गुरु खा रहे हो, सीधी वापस उठा के खा गई। पड़ा बोला ठीक है, रहने दो, चलो कोई बात नहीं। कई सालों के बाद कहीं ब्राजील में भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, दूर गांव में प्रचार करते करते पुस्तक वितरण कर रहे थे, दरवाजा खटखटाया तो एक महिला बाहर निकली, बोले पुस्तक लो, बोले आप अंदर आइए। अंदर गए तो देखा गौनिदाई के विग्रह। अरे बाप रे, गौनिदाई के विग्रह यहाँ कैसे, दंडवत प्रणाम। फिर उसने बोला क्या, बोले मैं कैसे जुड़ी थी, बोले मैं पहले एयर होस्टेस थी, ऐसे ही फ्लाइट में आपके स्वामी जी मिले थे, मैंने महाप्रसाद एक बारी खाया था और उसके बाद ये हो गया। श्रील प्रभुपाद की। इसलिए शिला प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में बताते हैं कि इस काउंट के भक्तों को भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई एक बारी भी उनके संपर्क में आ जाए तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आना ही चाहिए। तो हम सबके अंदर इतनी शुद्धता तो होनी ही चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, आप लोग बाहर व्यवसाय करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, आपके अंदर इतनी शुद्ध, आप 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सत्संग करते हैं, आपके अंदर इतना तो डिफरेंस होना ही चाहिए कि कोई आपके संपर्क में आए तो लगे उसके हृदय में कोई तो परिवर्तन आए। ये हमारा टेस्ट है और इसी तरफ तभी तो प्रचार बढ़ेगा, तभी तो प्रचार फैलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि हम सबको अंदर इतनी शुद्धता अपने अंदर लानी चाहिए। कोई कह सकता है प्रभु जी अब इतनी शुद्धता तो नहीं है, प्रयास करें, और ऐसी शुद्धता नहीं है तो कम से कम प्रभुपाद जी को अपने साथ लेकर चले। प्रभुपाद जी को अपने साथ कैसे लेकर चल सकते हैं, बुक्स के रूप में जहां भी जाएं कुछ ना कुछ पुस्तक हमारे पास होनी चाहिए, पुस्तक दे, और हम क्या करें साथ ही जहां भी जाएं हमारे पास कुछ प्रसाद हो, कुछ ना कुछ प्रसाद दे, क्योंकि जिसके भी हम संपर्क में आए कुछ ना कुछ उसको कृष्ण भक्ति हम देने का प्रयास करें। प्रभात एक बार एयरपोर्ट में खड़े थे तो फ्लाइट डिले हो गया, अपने शिष्य से पूछा कोई प्रसाद है, बोले नहीं, क्या करें फिर? प्रभुपाद का भाव देखिए, कुछ तो करना है। प्रभुपाद ने अपने गले की माला निकाली और माला के तोड़ के जितने भी लोग रास्ते में मिले थे उनको एक एक फूल बांटना शुरू कर दिया। वांटेड टू गिव देम समथिंग, कुछ ना कुछ तो देना है उनको, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से ईस्ट ऑफ कैलाश कमेटी वोटी थे यूथ फोरम में, वो कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर करते हैं कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति मिल गया, लड़का सा, और उससे बातचीत करते रहे, दिल्ली आए तो बोले उतर रहे हैं, बोले उसको एक किताब भी दे दी, बोले कहाँ जा रहे हो, आज संडे था, बोले चलो हमारे साथ ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, वो व्यक्ति खाली था, चलो चलो चलते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में चला गया वो भी साथ में, अच्छा लगा। फिर वो रहता था यहीं पंजाबी बाग के एरिया में, बोले आप यहाँ भी आ सकते हो, फिर लड़का यहाँ आने लग गया थोड़ा और आने लग गया, धीरे धीरे जुड़ गया, फिर बाद में वो यहाँ फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया। वो हैं हमारे बलिराज प्रभु जो अभी रोने कैसे मिले ट्रेन में नो? तो हम नहीं जानते किसके जीवन में कैसे कुछ परिवर्तन आ जाए, इसलिए हम जहां भी जाते हैं हमें कुछ संदेश देना ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है ना। कई बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हमारे आचरण को लोग बड़े क्लोजली देखते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जप करते हैं, सब देखते हैं लोग, अब क्या करने लगे हैं, अभी क्या खोलने लगे हैं, कौन सा पैकेट खोलने लगे हैं, क्या खाने लगे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बारी मैं आ रहा था, मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था शताब्दी में, तो मैं जप कर रहा था तो एक व्यक्ति बार बार मुझे पीछे मुड़ के देख रहा था, मैं पता नहीं क्यों देख रहा है जप कर रहा। तो जब मैं उतरा न्यू दिल्ली स्टेशन पे तो बोला एक मिनट के लिए मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, बोले हाँ, कहता है जप कर रहे हो आप, मंत्र बोल रहे हो, इतना तेज तेज क्यों बोलते हो, क्या जल्दी है आपको इतना तेज, ऐसे कोई ध्यान थोड़ी लगता हो। बाप रे इतना ध्यान देते हैं, बोले आप मंत्र है उसको रुक रुक के बोलिए, ध्यान से सुनिए तब होता होगा। मेरा बात आपकी ठीक है लेकिन हम इसलिए थोड़ा तेज बोलते हैं कि मन भटके ना। मैंने तो बहुत इतना सावधान मन, लोग इतना ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे कई बार हम जाते हैं बड़े ट्रिप को लेकर, तो एक बार व्यक्ति आए हमारे पास, बोले आप क्या करते हो, माला, हम माला करते हैं, तो कैसे, अच्छा ये ध्यान लगाते हैं, कहते हैं हाँ, कहते हैं इस ध्यान में बीच में बातें भी कर सकते हैं, बीच में हंसी मजाक भी कर सकते हैं। मैं कहा नहीं, कहता हम देखते हैं आपके भक्त लोग सब कर रहे हैं ऐसा, तो लोग सब देखते हैं और हमारे आचरण को देखकर, हमारे भक्ति के प्रति गंभीरता को देखकर उनके हृदय में परिवर्तन आते हैं। जैसे अभी हम जा रहे थे, अभी मायापुर जा रहे थे, तो हम 3-4 लोग थे, हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठे थे, तो प्रसाद तो हम जानते हैं भक्त लोग प्रसाद ले जाते हैं, हमारा ऐश्वर्य प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद, और प्रसाद होता भी ज़्यादा है, तो खूब पाया, उसको भी खिलाया, बड़ा संतुष्ट हो गया, क्या प्रसाद है। तो कुछ बचा हुआ था फिर भी बच गया, बोला रख लो आगे काम आएगा, ले आगे दूसरा प्रसाद वाला इटावा से और आ रहा है प्रसाद, ये तो ब्रेकफास्ट, बड़ा हैरान हो गया। फिर घर में उसकी बातचीत होती रहती थी, फिर बोलता था मैं ना इस कौन के संत लोग हैं उनके साथ हूँ, बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया है। फिर रख दिया उन्होंने, फिर इटावा आया, वहां से लंच प्रसाद चढ़ गया, फिर वो देख रहा क्या आ रहा है, एक के बाद एक कनस्तर आ रहे हैं बढ़िया, फिर जो बच्चा हुआ था वो बट गया वहीं पे, फिर कुछ समय के बाद लंच परोसा गया, फिर वो देख रहा क्या है, बोला आप भी लंच, वो अपने घर से कुछ लेके आया था, वो वहीं लटका हुआ था उसका थैले में, फिर उसको दिया परोसा लंच, फिर कमाल का प्रसाद क्या है, फिर घर से फोन आया, बोले गुरु जी हैं बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा संग मिल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से लोग प्रभावित होते हैं, फिर हमने उनको हरिनाम के विषय में बताया, हरिनाम उसने जब करना शुरू किया, तो हम बाहर जाएं तो हम अपना आचरण ऐसा रखें कि हम लोगों को प्रभावित कर सकें, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, और प्रभुपाद हमसे ये अपेक्षा करते हैं। हम भगवान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु तो झारखंड के जंगल में गए, सबसे पशुओं से उन्हें हरिनाम करा दिया, लेकिन हमारे अंदर इतनी शुद्धता होनी चाहिए, ऐसा हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम कुछ पुस्तक प्रसाद अपने साथ रखें, अपना आचरण सुंदर रखें, ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। विद्यारस्य यत प्रभु करे अहंकार सुनन तथापि प्रीति प्रभु रसवा। हालांकि विद्यारस का आस्वादन करे थे प्रभु और अहंकार में रहते थे, लेकिन फिर भी लोगों को उनका सुन के उनके बारे में उनकी प्रीति हो जाती थी। यवनो प्रभु देखे करे बड़ प्रीत सर्वभूत कृपालुता प्रभु। इवन जो यवन थे मुस्लिम थे वो भी महाप्रभु से प्रेम करते थे। तो ये महाप्रभु का चल रहा था, एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, ये तो उनका विद्यारस का आस्वादन चल रहा था, क्योंकि निमाई पंडित स्वयं भगवान है, बीच बीच में अपना वो ऐश्वर्य भी दिखाते थे। तो एक बारी उन्होंने पूरे प्रेम के अपने भाव दिखा दिए, सारे अष्ट सात्विक दिखाना शुरू कर दिए, लेकिन लोगों क्या लगा कि उनको वायु का रोग हो गया है। एक दिन वायु देहा मांदे करे दल प्रकाशेना प्रेमा भक्ति विकार सकल। ऐसा दिखाया महाप्रभु ने, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और पूरा शरीर स्तंभित हो रहा है, जमीन पे लौट रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, सब लोग बड़े डर गए और जोर जोर से चिल्लाकर जैसे कोई भी सामने आता तो उसको मारपीट करना शुरू कर दिया, घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इस पूरे विश्व को धारण करने वाला मैं हूं, मेरा नाम विश्वंबर है, मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूं। सब लोगों ने पागल हो गया, क्या हो गया सब, कोई बोलने लगा इसके अंदर दानव प्रवेश कर गया है, कोई बोले किसी डाइन का प्रभाव है, क्या हो गया। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब ने बोला ये क्या है, ये वात रोग है, ये बहुत बोलता है, रात दिन बातचीत करता रहता है, जो लोग ज्यादा बातचीत करते हैं उनका वात इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर ये उछल कूद ये सब शुरू, ये सब वायु रोग है ना। तो सब बड़े बड़े लोग आ गए, बुद्धिमंता खान और मुकुंद संजय, ये बड़े रिस्पेक्टेबल आदरणीय लोग थे, नवदीप के रईस लोग थे, और इनके पास सब दवाइयां होती थी, बोले कोई घबराओ मत, ये साधारण वात रोग नहीं है, महावायु रोग है, सुनो ये तो बहुत कठिन है। तो क्या किया हमने, महाप्रभु के सर पे तेल मालिश करने लगे, जब वो तेल मालिश करते थे महाप्रभु जोर से और हंसते थे, महाप्रभु हंसते थे, मैं ये जो आत्मा का विकार है और ये शरीर के विकार को ठीक कर रहे हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है, तो और घबरा जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी के टब में तेल भर दिया और पूरे निमाई पंडित को उस तेल के टब में डाल दिया, और पूरे शरीर में मसाज करने लगे, सर पे तेल डालने लगे, महाप्रभु जोर जोर से और हुंकार मारने लगे, सब बहुत डर गए। फिर महाप्रभु ने देखा सब भक्त लोग घबरा रहे हैं, तो धीरे धीरे महाप्रभु शांत हो गए, जब महाप्रभु शांत हो गए सब भक्त लोग बड़े खुश हो गए और सब जोर से बोले हरि 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 हरि, और सब एक दूसरे को वस्त्र दान करने लगे, गले लगाने लगे, सब बोले जियो जियो निमाई पंडित खूब जियो, सब आशीर्वाद देने लगे। जब ये सब हो गया और वैष्णवों को मालूम चला तो सब वैष्णवों को और बड़ा दुख हुआ, प्रभु रे देखिया सर वैष्णव रे गण सबे बोले भज बाप कृष्ण, सब बोले भज बाप, अरे बाप अब तो कृष्ण के चरण को भज लो, अभी मरते मरते बचे हो, अब तो कृष्ण के चरण को बच लो, क्षणिक नाहिक बाप अनित्य शरीर तुम्हारे के शिखावि मुँह तुम ही महाधीर, है ना, क्षणिक शरीर है अभी खत्म हो जाएगा और तुम्हें अब क्या सिखाएं, तुम तो महाधीर हो बड़े पंडित हो, भज लो भगवान के नाम को। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते थे ठीक है मुझे कुछ समय दीजिए, मैं थोड़ा और पढ़ लिख लूँ उसके बाद आऊँगा, इस प्रकार से महाप्रभु आगे निकल जाते थे। महाप्रभु क्या करते थे, दोपहर तक तो वो बच्चों को पढ़ाते थे, फिर आते थे घर में, आते थे घर में शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, फिर तुलसी को जल देते थे, फिर उनकी जो पहली पत्नी थी, क्या नाम था उनका, लक्ष्मी प्रिया जी, उनके लिए भोजन परोसती थी, महाप्रभु उसको पाते थे, थोड़ा विश्राम करते थे, लक्ष्मी प्रिया जी उनके पांव को दबाती थी, फिर महाप्रभु दोबारा से पुस्तक उठा के गंगा के तट पे चले जाते थे और फिर वहां से फिर अपने छात्रों के साथ चर्चा करते थे। और फिर महाप्रभु बीच बीच में पूरे नवद्वीप में घूमने जाते थे। तो नगर आसिया करे विविध विलास, सबा रसाहित करे हासिया सा, सब लोगों के पास जाते थे, मिलजुल के हास्य परिहास करते थे, बातचीत करते थे। और यद्यपि प्रभु रखे है तत्व नहीं जाने, तथापि साध्वस करे देखे सर्वजन। आप में से मेघाल से 25% लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं क्यों बोलूं मैं, एनर्जी सेव करूं। लेकिन एनर्जी सेव इसमें मत कीजिए, जितनी शक्ति है ये वृंदावन दास ठाकुर जी की एक्सटेसी है, इसको आप रिपीट करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। कितने लोगों को भक्तों की कृपा चाहिए, तो शर्मा क्यों रहे हैं, तभी तो ये सारा प्रोजेक्टर इसलिए लगाया गया कि आप लोग पढ़ के इसको बोल सकें, नहीं तो हम वैसे ही बोल देते है ना। तो चाह से बोलिए सब इकट्ठे, कहे तत्व नहीं जाने तथापि साध्वस करे देखी सर्व। थैंक यू वेरी मच। हालांकि कोई नहीं जानता था कि नमाई पंडित स्वयं भगवान है, उनके तत्व को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी सब लोग उनका देखना चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। तो महाप्रभु क्या किए, सबसे पहले एक जुलाहे के पास गए, जुलाहा जानते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, और उनको बोला कि भाल वस्त्र आन प्रभु बोलिया वचन तंतु वाये वस्त्र। भैया ये भैया कोई बढ़िया सा कपड़ा दिखाओ, तो गए उन्होंने बढ़िया सा कपड़ा लेके आए। जब कपड़ा लेके आए तो बोले क्या दाम इसका, बोले निमाई पंडित जो मर्जी दाम देना दे देना। बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। बोले ले जाओ कपड़ा आपका है, डाल लो, 10-15 दिन में जब इच्छा हो जो हो दे देना। ये उनकी डीलिंग होती थी, कोई किसी की दुकान में जाओगे कोई मांगेगा देगा ऐसा। लेकिन हिमाय इतने सुंदर होते थे, उनसे लोग आकर्षित हो जाते थे। तो इस प्रकार से कपड़ा लिया उनसे और उस जुलाहे के ऊपर कृपा दृष्टि करके महाप्रभु आगे गए। फिर महाप्रभु सोचा चलो अब ग्वालों का उद्धार करते हैं, तो ग्वालों की सभा में गए।
महाप्रभु द्वारे ब्राह्मण संबंधे प्रभु,
तो गोपों की सभा में गए और बोले अब ब्राह्मणों का कुछ मजाक उड़ाते हैं। बोले ब्राह्मण आए भैया तुम्हारे घर में, अरे बेटा दही दूध लेकर आओ, आज तुम्हारे घर में ब्राह्मण आए हैं, कुछ महादान करो। इस ढंग से मजाक करने लगे। तो बाकी सब ने क्या बोला,
देखे
तो साक्षात कामदेव है, उन्होंने उनको बुलाया और बड़ा उत्तम आसन दिया। उन्हें बोले क्या,
प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बलि सब करे संभा।
तो निमाई पंडित भी मजाक के उसमें थे, तो गोपगण भी मजाक कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला था, अरे बेटा, उनको बेटा कह रहे थे और ये क्या कह रहे थे, मामा जी कह रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज कहते हैं कि क्यों कह रहे थे मामा, तो वो समझाते हैं कि बंगाल में ये रीत है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो ब्राह्मणों को दादा ठाकुर कह के पुकारते हैं। दादा ठाकुर मतलब बड़ा भाई। तो ये गोपों की जो माँ है वो निमाई पंडित को दादा ठाकुर, और उनके बच्चे क्या हो गए, उनके भांजे हो गए ना, इस ढंग से मामा। और जैसे अभी हम गए भी थे नवद्वीप मंडल में, तो गोद्रुम द्वीप में एक जगह आती है गोरदा, है ना, कितने लोग गए हैं गोरदा स्थान पे, कम लोग गए होंगे। तो गोरदा एक लीला स्थली है और वहाँ पे यही कोई पास टाइम आता है कि वहाँ पर वो जाते थे निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ, वहाँ खूब जोर से संकीर्तन करते थे। और मालूम चलता कि यहाँ पे ग्वाल लोग रहते हैं, और फिर वहां ग्वालों के पास एक ग्वाल था जिसका नाम था भीमा, वो महाप्रभु को ले गया अपने घर में और फिर वहां पे उनको खूब उनको दही दूध खिलाया और फिर बाद में वापिस वहां पर आए और कीर्तन करने लगे। तो ग्वालों ने बताया कि जो नदी है इसमें हमारी जो गाय है पानी नहीं पी सकती क्योंकि इस नदी में एक मगरमच्छ रहता है जो गाय हमको खा जाता है। तो महाप्रभु फिर से कीर्तन शुरू किया, कीर्तन करते करते वो जो मगरमच्छ है बाहर आया और उसने महाप्रभु के चरणों को छुआ और जैसे ही महाप्रभु के चरणों को छुआ तभी क्या हुआ, उसका शरीर बदल गया और उसको एक बहुत ही दिव्य देवताओं का शरीर प्राप्त हो गया। अरे कैसे हो गया, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उसने प्रणाम किया और उन्होंने बताया महाप्रभु को कि मैं कौन हूँ। मतलब द्वापर युग में कामे वन में जब दुर्वासा मुनि थे वहाँ पे आए थे पांडवों के पास, तो मैं एक ब्राह्मण पुत्र था और बहुत ही उद्दंड था और मैंने पीछे से जाके दुर्वासा मुनि जो कि शिव जी के अवतार हैं उनकी चोटी काट दी थी। इतना बड़ा दुस्साहस, और दुर्वासा मुनि जी ने उनको श्राप दिया था तुमने पीछे से आक्रमण किया जाओ मगरमच्छ बन जाओ। तो ये ब्राह्मण का जो पुत्र है बार बार रोने लगा कुछ तो कृपा कर दो। तो फिर दुर्वासा मुनि जी के अंदर क्योंकि वो शिव जी के अवतार हैं तुरंत प्रसन्न भी हो गए, बोले ठीक है आने वाले कलयुग में गौरांग महाप्रभु आने वाले हैं वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, संकीर्तन करते हुए जब आएंगे जैसे तुम उनके चरणों को छुओगे तुम एक देव तुल्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। हरी बोल, बोले गौरांग महाप्रभु के। इस प्रकार से वही यहाँ पे प्रसंग दिखता है कि सभी गोपगण परिहास कर रहे हैं तभी कि हाँ बोले उसमें से एक बोला चलो मामा क्या करें घर ले जाता हूँ आपको और घर ले जाके आपको क्या खिलाऊंगा, भात खिलाऊंगा। है ना, मजाक कर रहे हैं उनके साथ है ना। महाप्रभु क्या खाने आए थे, दही दूध खाने आए थे, चलो घर जाके आपको भात खिलाएंगे। जैसे निमाई थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्यों भात खिलाओगे, तो दूसरे बोला भूल गए पहले भी तो हमारे आगे भात खाते थे बहुत। तो
सरस्वती सत्य कहे गोप नहीं जाने हासे महाप्रभु गोप गाने रवचन।
सही कह रहे थे क्योंकि पूर्व कृष्ण जाते थे गोपों के यहाँ पे वो सब कुछ खाते थे तो स्वयं सरस्वती उनके माध्यम से बोल रही थी और ये सुनकर महाप्रभु हंसने लगे।
सम्राम
प्रकार से गोपों के यहाँ से उनका उद्धार करके महाप्रभु बोला अब कक्ष के पास जाएं। फिर महाप्रभु जाते हैं एक गंध वणिक के पास जो कि गंध बेचता था और उसको बोला भैया कोई बढ़िया सा गंध दो। एक बात बता दूं मेरे पास पैसे कोई नहीं है। और गंध वाले बोलते हैं आपसे पैसे मांग के मैं क्या करूंगा। और फिर उसने क्या किया कि पूरे महाप्रभु के शरीर पे निमाई पंडित के शरीर पे बढ़िया सा गंध लगा दिया और बोले कर सुबह स्नान करने के बाद भी अगर आपको इसमें गंध आ रही हो तो आप जितना चाहे पैसे दे देना अन्यथा मत देना। तो इस प्रकार से उन्होंने निमाई पंडित की सेवा की और फिर निमाई पंडित उनको भी आशीर्वाद देकर फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निमाई पंडित जाते हैं जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। इसके बाद निमाई पंडित जाते हैं एक मालाकार के पास फूल बनाने वाले के पास और उसको बोलते हैं भैया बढ़िया सा फूल दो। तुरंत वो मालाकार आता है माली आता है और महा निमाई पंडित को बढ़िया सा फूल डाल देता है हार डाल देता है और निमाई पंडित उसको भी आशीर्वाद देके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर निमाई पंडित जाते हैं एक शंख बेचने वाले के पास बोले बढ़िया सा शंख दो। बोलते आपके लिए निमाई पंडित बढ़िया से बढ़िया शंख। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं निमाई इसको ले जाओ जा 15-20 दिन में जितना पैसे हो दे देना चाहे मत भी देना। तो इस प्रकार से निमाई पंडित इस लीला से क्या दिखा रहे हैं कि निमाई पंडित सबके पास जा रहे हैं और जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं। वो बाद में जाते हैं एक पान वाले के पास है ना तांबूली के पास।
तांबुली देखिया रूपा मदन मोहन चरण न धोली नहीं दिले ने आसन।
उस पान वाले ने बिना कुछ कहे बाकी सबसे जाके तो निमाई पंडित ने मांगा था, मुझे गंध दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे शंख दो, मुझे दूध दो। लेकिन पान वाला तो इतना गदगद हो गया, इसने बोला निमाई पंडित मेरे घर में, मैं तो इतना नीच हूं। तुरंत जाके महाप्रभु को पान अर्पण कर दिया। महाप्रभु ने पान खाया और उस पान वाले ने देखा ये तो स्वयं मदन मोहन है, और उनके चरण की धूल अपने सर पे लगाई, उनको आसन दिया और उनको पान ऑफर किया। जब पान लिया महाप्रभु ने तो रेता बोले तो ऐसा कह के उन्होंने उनको परम संतोष हुआ। और महाप्रभु जब पान दिया, महाप्रभु उस प्रति कपड़े प्रसन्न हुए।
प्रभु बोले काड़ी पीना केने गुया दिला तांबुली बाले ये चिते हैं।
प्रभु ने पूछा कि बिना पैसे दिए आपने मुझे पान क्यों दे दिया? सीधी सी बात, कैसे दुकानदार हो आप, कोई कस्टमर आपके पास है तुरंत पान दे दिया बिना पैसे के। तो उस पान वाले ने बोला चित्ते हेने लीला, अंदर से एक प्रेरणा आई बस कि आपको दे दूं। तो इस प्रकार से निमाई देते थे अपने आप भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार महाप्रभु ये लीला करके हमें सिखा रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है? भगवान के। भगवान श्री कृष्ण ने तो आदेश दिया यत करोषि यत अश्नासि यत जुजोषि ददासि यत यत तपस्वसी कौनते तत् कुरुस्व मद अर्पण। सब कुछ मेरे को अर्पण करो, जो कुछ खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो। लेकिन निमाई पंडित और दयालु हैं, बोले कलयुग के जीव अपने आप तो देंगे नहीं, खुद चले जाते हैं और मांग रहे दो दो दो। और क्योंकि वो इतने सुंदर हैं सब लोग अपने आप दे रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कि हालांकि महाप्रभु कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा बोले अच्छी जबरदस्ती है, तो जबरदस्ती लग रही है नहीं। कोई नैतिकता के स्तर से बात करेगा ये अच्छी जबरदस्ती है, आपने पंडित होने का लाभ उठा रहे हो। एक बेचारे पनवाड़ी के यहाँ चले गए मुफ्त का पान खा लिया, एक बेचारे जुलाहे के यहाँ चले गए मुफ्त का बढ़िया कपड़ा ले लिया, ये अच्छा है भैया, ये जबरदस्ती की बात है। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है, कई बार जबरदस्ती करनी पड़ती है किसी को भक्ति देने के लिए, है ना। नैतिकता के स्तर पे देखते रहेंगे तो ये क्या हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती कई बार करनी पड़ती है। इसलिए भक्त लोग भी कई बार थोड़ी जबरदस्ती करते हैं तो शुरू शुरू में किसी को बुरा लगता है, अब जबरदस्ती क्यों भुगत पा रहे हो, लेकिन मना कर दिया ना, ये भक्त लोग फिर बोलते हैं ले लो ले लो। एक बार रेड लाइट पे ऐसे मधुसुंदर प्रभु पुस्तक बांट रहे थे, गीता बांट रहे थे, तो व्यक्ति ले नहीं रहा था, तो जबरदस्त उसको दे दी इंग्लिश की भगवद गीता। वो बहुत बड़े कंपनी का एक मालिक था, उसने ले ली, जाओ यार लो 500 रुपये जाओ यहाँ से, है ना, क्या पीछे पड़े रहते पैसे के लिए हमें गीता देते हैं, लग के रख दी गीता कहीं रख दी। कुछ समय के बाद, महीनों के बाद, उनके पिताजी बिल्कुल मृत्युशैया पे आ गए। तो बोले मैं क्या करूं अपने पिताजी के लिए, मृत्युशैया पे आ गए। तभी भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, ए गीता मिली थी एक बार, तो तुरंत गीता उठा के लाए, उनके शरीर छोड़ने से पहले उनको गीता सुना दी, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। और फिर इतने गदगद हुए उस क्षण के कि किस व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती गीता दी थी, मैं तो ले नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने एड्रेस ढूंढा, ईस्ट ऑफ कैलाश में आए, जैसे ही मधुसूदन प्रभु दिखाई दे उनके चरण पड़ गए, भैया आपकी कृपा से मेरे पिताजी का उद्धार हो गया। इसलिए भक्त लोग जबरदस्ती करते हैं, लेकिन भक्त लोगों की जबरदस्ती के पीछे अज्ञात स्वीकृति मिलती है। इस बारे कई ऐसे भक्त मिलते हैं, पुराने भक्त हैं, बोले मैं तो इस खाने में बिल्कुल आता ही नहीं था, एक लाइफ नंबर वाले प्रभु जी थे पीछे ही पड़ गए मेरे, रोज फोन रोज फोन रोज फोन, घर में आ जाते थे बोले कुछ तो किस्त दे दो, 100-100 रुपए किस्त दे के, मैंने कहा थक जाएंगे, ये थकते नहीं थे, पता नहीं पीछे पड़े रहे पीछे पड़े रहे पीछे पड़े रहे। आज मैंने पहली दीक्षा ली, ब्राह्मण दीक्षा ली, आज मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, कैसे जबरदस्ती लाइफ नंबर बनाया था ना। तो इसलिए भक्त लोग जब जबरदस्ती करें, गुरुजन या वरिष्ठ भक्त जबरदस्ती करें, इसके पीछे हमारा ही भला होता है। तो निमाई पंडित जा रहे हैं जबरदस्ती मांग रहे हैं सबसे, लेकिन क्या कर रहे हैं, सबको सुकृति बांट रहे हैं। इसके बाद निमाई पंडित करते करते एक ज्योतिष के पास गए। वो ज्योतिष नवदीप में बहुत प्रसिद्ध था, सब कुछ बताया था। निमाई पंडित गए, बोले ज्योतिष मैंने सुना तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, जरा बताओ पिछले जन्म में मैं कौन था। बोले अच्छा निमाई अभी बताता हूं। उसने आंखें बंद की, गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, ध्यान लगाने लगा। जैसे ही ध्यान लगाया उसको क्या दिखाई दिया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर भुज श्याम श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे ज्योतिर्धाम। उसको लगा एक श्याम वन का सुंदर चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म और श्रीवत्स कौस्तुभ है, ये सब देखकर हैरान हो गए। अरे ये क्या है। थोड़ा और आगे देखा कि इस चतुर्भुज रूप को देवकी और वसुदेव एक कारागार में प्रणाम कर रहे हैं। फिर और देखा कि वसुदेव एक छोटे से बालक को गोकुल ले जा रहे हैं। फिर देखा कि नंद महाराज के आंगन में एक छोटा सा बालक माखन लेके घूम रहा है। फिर देखा एक श्याम सुंदर यमुना के तट पर रासलीला कर रहा है। बोले क्या है। आंखें खुली तो निमाई पंडित मुस्कुरा रहे। बोले कौन था मैं, बोलो। बोले अभी बताता हूँ। फिर आंखें बंद की, बोले गोपाल ये सामने खड़ा है ब्राह्मण कौन था, ये बताओ पिछले जन्म में कौन था, कौन था। और फ्लैशबैक चला गया। फिर उनको भगवान राम के दर्शन हुए, फिर मत्स्य अवतार के दर्शन हुए, फिर वरा भगवान के दर्शन हुए, नरसिंह भगवान के दर्शन हुए, बलराम जी के दर्शन हुए। वो तो चकरा गया उसने। फिर निमाई पंडित आंखें खोली, निमाई पंडित फिर मुस्कुरा रहे, बताओ सर्वज्ञ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला देखो, उसने अंदर ही अंदर सोचा लगता है ये जो निमाई पंडित है, लगता है बहुत ज्यादा इसके पास मंत्रों का जाल है कुछ, तभी सारे मेरे मंत्र काम नहीं कर रहे, या फिर कोई ये देवता है मेरी परीक्षा लेने आया है। बोले अब क्या करूं। बोले देखो अभी मेरा ना मंत्र का जप ठीक नहीं हो रहा, तुम घर जाओ दोपहर में फिर बात करेंगे। निमाई पंडित बोला कोई बात नहीं, अच्छे ढंग से ध्यान लगा लो, जब मालूम चले बता देना कि मैं पिछले जन्म में कौन था। निमाई पंडित की जय। ए माता ईश्वर तत्व देखे सर्वजन, तथापि न बुझे किछु है न माया का। इसलिए भगवान अपना ईश्वर तत्व दिखाते भी थे, लेकिन माया से ढकने के कारण कोई उनको जान नहीं पाता था। इस प्रकार से महाप्रभु घूमते घूमते गए अपने बहुत ही प्रिय भक्त श्रीधर पंडित के यहाँ पे। श्रीधर रे प्रभु बड़ा प्रसाना अंतरे, नाना छले आई सेना प्रभु ताना। जो ये श्रीधर पंडित थे निमाई पंडित को बहुत अच्छे लगते थे, निमाई पंडित उनसे से बहुत पसंद रहते थे। नाना छले तरह तरह के बहाने लगाकर प्रतिदिन महाप्रभु उनके घर में जाते थे। आप देखिए कितने प्रिय होंगे वो निमाई पंडित को, कि प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना ढूंढकर निमाई पंडित उनके घर में जाते थे और क्या करते थे। परम सुशांत श्री धारे रा व्यवसाय प्रभु विहार तेरा। श्रीधर पंडित बेचारे बहुत ही सरल भक्त, सरल उनका व्यवसाय, केले के पत्ते से डोने बना के बेचते थे, कुछ केले बेचते थे। और ये निमाई पंडित उद्धे तेरा प्राय, बहुत ही चंचल घमंडी बालक, और रोज कम से कम एक या दो घंटे बिताते थे, सर खा जाते थे श्रीधर पंडित का। कैसे खाते थे श्रीधर। वाको वाके दो चारी दंड, दंड मतलब आधा घंटा, एक दो घंटे बिताते थे। यस बोले श्रीधर तुम रात दिन हरी हरी करते रहते हो, फिर भी इतने गरीब क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। आप देखो सामने ये जो लोग हैं और हैं, बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मीकांत जो लक्ष्मी के स्वामी हैं उनकी तुम सेवा करते हो, ना तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ना तुम्हारे पास कुछ पहनने को है, इतने दुखी दिखाई देते हो। हम सीधा बड़े सरल थे, बोले भूखा तो मर नहीं रहा, कपड़े डालने को छोटा हो बड़ा वस्त्र कुछ तो डाल ही लेता हूं, नंगा तो घूम नहीं रहा। बोले क्या डाल रहे हो, जो धोती डाली हुई है 10 गांठे उसमें 10 जगह से फटी हुई है, और जो छत है छत में सारे छेद ही छेद है, ये कोई रहना ये कोई पहना है कपड़े। अरे देखो ये चंडी के जो भक्त है क्या इनका ऐश्वर्य है, और तुम कृष्ण के भक्त हो क्या गरीबी में रह रहे हो, क्यों नहीं तुम चंडी के भक्त बन जाते। सीता ने बोला हे ब्राह्मण जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, हर कोई जो भी हो अमीर हो गरीब हो है तो सब काल के नियंत्रण में ही, काल यम के अंडर ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा अपने महल में खाता है, पक्षी अपने घोंसले में खाता है, बात तो एक ही है, सब सब अपने कर्मों का खा रहे हैं। काल सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर की इच्छा से खा रहे हैं। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कृष्ण भक्त जो कि स्वयं लक्ष्मी के पति है उनके भक्त तो निर्धन दिखते हैं कई बारी, और जो दुर्गा मैया के भक्त हैं वो बड़े शहनशाह होकर घूमते हैं, ये क्या चक्कर है, दिखा आपने भी ऐसा। और यही प्रश्न श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज भी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि क्या चक्कर है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने भी यही प्रश्न पूछा था, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, और जब युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कृष्ण से तो कृष्ण बड़े खुश हुए थे, कृष्ण ने डांटा नहीं था, ये उल्टा सीधा प्रश्न पूछते हो कि मेरे भक्त गरीब क्यों होते हैं, और किसी से आप पूछ लो सर आपकी भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन देखता हूँ आपके भक्त बड़े गरीब होते हैं, तो डांट कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा प्रश्न है, और फिर भगवान कृष्ण ने उसको उत्तर दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी जीव को उत्तर देते हैं तो केवल उस जीव का उद्धार नहीं है, आने वाले कई पीढ़ियों का उद्धार है। तो क्या इसका उत्तर कि शिव जी के भक्त दुर्गा जी के भक्त तो बड़े धनी होते हैं, शिव जी खुद इतने वैरागी हैं कुछ पहनने को नहीं है, जंगल में रहते हैं शमशान घाट में रहते हैं, उनके भक्त बड़े महलों में रहते हैं, और कृष्ण जी खुद बड़े बड़े महलों में रहते हैं और उनके भक्त बेचारे श्रीधर पंडित जरा झोंपड़ी में रहते हैं, ये बात बड़ी समझ में नहीं आती है ना, खुद मालिक कैसे हैं तो भक्त कैसे हैं। तो क्या उत्तर दिया था याद है किसी को, ऐसा क्यों होता है, आपको तो पता ही हो क्यों है ऐसा, और बड़ा अच्छा राय देते हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं क्या चक्करों में पड़े हो, हरे कृष्ण महामंत्र आपको सूट ही नहीं कर रहा, ये लीजिए दुर्गा जी का मंत्र लिखिए, क्या रात दिन कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा गारंटी है, बाद में कर लेना एक बार बिजनेस सेटल हो जाए फिर हरे कृष्ण महामंत्र पे आ जाना, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो सबको साथ लेके चलो, ये भी कर लो भाई बाद में कर लेना, कहा कृष्ण से इतना कर सकते हैं जाते रहो वहां पे लेकिन मंत्र यही लो दुर्गा जी को छोड़ो मत, इसलिए कई लोग भक्त दीक्षा लेने के बाद भी नवरात्रि नहीं छोड़ते, डर लगा रहता है कि प्रभु जी बिजनेस घर तो चलाना ही है ना, अंदर की बात है आप तो ऐसे बोल सकते हैं हमें घर चलाना है हमें मालूम है क्या होता है सब है ना, गरीबी अभिशाप है, आपने देखा नहीं हमने कितना संघर्ष किया, तो वी कांट अफोर्ड चांस नहीं ले सकते, तो इसलिए दुर्गा जी को नाराज नहीं करना। तो इसलिए क्या उत्तर है इसका, उत्तर जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, छोड़ो इस बात को छेड़ो मत आगे बढ़ो है? है? चाहिए यहां भी पालन करना पड़ेगा बताइए कितने लोगों की जाने की इच्छा है, और कितने लोग जान के पालन भी करेंगे। हाँ फिर ठीक है, बताइए कोई कोई उत्तर है इसका, कुछ मालूम है किसी को? हाँ वेरी गुड, प्रभु जी के लिए तालियां बजाइए, वेरी गुड। जो शिव जी और दुर्गा जी के भक्त हैं उनको जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो भौतिक लाभ ही हैं, प्रकृति के तीन गुणों के अंदर ही हैं और वो नश्वर हैं, वो बंधन के कारण बनते हैं, मुक्ति के कारण नहीं। और भगवान श्री कृष्ण के जो लाभ प्राप्त होते हैं भक्ति के, वो नश्वर नहीं सनातन है, वो हमें प्रेम प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को वास्तविक सुख प्राप्त होता है, वास्तविक लक्ष्मी, जहां नारायण है लक्ष्मी का वही निवास है। लक्ष्मी का अर्थ केवल हरे नोट ही नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है सुख संपन्नता। आप दुर्गा जी की शिव जी की भक्ति करके कुछ कागज के नोट कमा सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं, सुख नहीं ला सकते। तो श्रीधर पंडित के यहां पे सुविधाएं नहीं थी, सुख बहुत था। इस संसार में सुविधाएं बहुत हैं लेकिन सुख नहीं है। च्वाइस आपकी है, आपने सुविधाओं को लेना है कि असली सुख को लेना है। किसको लेना चाहेंगे आप? असली सुख को। श्रीधर पंडित पूर्ण रूप से आनंद में, पूर्ण रूप से। उनके पड़ोसी भी उनको ये बोलते थे, स्वयं निमाई पंडित भी कह रहे हैं, अरे क्यों हरी हरी बोलते रहते हो पूरा दिन। उनके आसपास के पड़ोसी समझते थे पूरे रात ये क्या करता रहता था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो बोलते थे खुद भी नहीं सोता, हमें भी नहीं सोने देता। बोले इसको कुछ खिला दो यार, कुछ खाने का तो है ही नहीं इसके पास। लेकिन वो क्या करते थे, आनंद में रहते थे, भगवान की भक्ति में ही रहते थे, कोई फुर्सत ही नहीं उनको। और वो क्या करते थे, जो थोड़ा बहुत कमाते थे केले के पत्ते बेच के मुश्किल से दो आने कमाते थे, और उसमें से भी उनका हृदय इतना बड़ा था, उसमें से 50% एक आना गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। ये होता है हृदय बड़ा होता है। वास्तविक जो गरीबी है वो हृदय की गरीबी है। इस संसार में वास्तव में बोला गया गरीबी अभिशाप है, लेकिन कौन सी गरीबी, आध्यात्मिक रूप की जो गरीबी है। लोगों को मालूम ही नहीं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, ये असली हृदय की गरीबी है। इस गरीबी को दूर करना है हमने। और इसलिए भक्त लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं, बहुत धनी हैं, क्योंकि उनके हृदय में कौन है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं लक्ष्मीपति है। तो निमाई पंडित कह रहे हैं कि भैया तुम्हें क्या कर रहे हो, काला पुना सबार समान है जय, और बोलो इस संसार में अगर कोई धनी है या गरीब भी है, सब लोग काल के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है, काल के नियंत्रण में अर्थ है हर किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है जो कि झोपड़ी में रहने वाला, और एक रानी है जो महल में रहती है उसके गर्भ में जो बच्चा है वो एयर कंडीशन में बैठी है और ये बेचारी धूप में सड़कों में घूम रही है, तो उसके घर में जो बच्चा है जो एयर कंडीशन में रह रही है वो महिला, वो बच्चा बड़ा कंफर्टेबल होगा गर्भ में। गर्भ के अंदर एयर कंडीशन काम नहीं करेगा, उसको गर्भ में वही दुख होगा जो एक गरीब महिला के गर्भ में बच्चे के दुख में होता है। एक अमीर व्यक्ति को बीमारी होगी या एक गरीब व्यक्ति को बीमारी होगी, दुख वही होगा। एक अमीर व्यक्ति को जो मृत्यु के समय कष्ट होगा, एक गरीब व्यक्ति को भी मृत्यु के समय वही कष्ट होगा। एक अमीर व्यक्ति के बुढ़ापे का जो कष्ट है, एक गरीब व्यक्ति के बुढ़ापे का वही कष्ट है। तो कालियम तो सबके लिए बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सोचने की बात है। तो इसलिए असली धन कमाना है आध्यात्मिक धन। जब श्रीधर पंडित ने ऐसे लॉजिक दिए तो निमाई पंडित ने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम्हारे पास असली धन है जो तुमने छुपा के रखा हुआ है, कुछ समय के बाद ही मैं इसका खुलासा करूंगा, भंडारा फोड़ूंगा इसका। पूरे दुनिया को दिखाऊंगा तुम्हारे पास असली धन छुपा के रखा हुआ है, वो क्या धन है। श्रद्धा पंडित जी अजीब बात कर रहे हो, पहले कह रहे हो तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर बोले तुम्हारे पास धन है, मैं भांडा फोड़ूंगा। बोले यार घर जाओ यार, बस और झगड़ा मत करो मेरे साथ। बोले ठीक है प्रभु, बोल बोले ठीक है चला जाऊंगा घर, कुछ दो मुझे अभी, कुछ अभी कुछ दो मैं चला जाता हूँ। बोले ठीक है श्रीधर, बोले मेरे पास है क्या है तुम्हें दे दूंगा भाई, क्या है मेरे पास। जो तुम्हारे पास असली धन है वो तो अभी छिपा के रखो, अभी मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे क्या दो। जो तुम्हारे पास है ना मुझे, वो केला दे दो, केले के पत्ते दे दो, दे दो मैं लेके चला जाऊंगा। जो असली धन है उसको मैं छेड़ नहीं रहा। क्या था असली धन श्रीधर के पास है? भक्ति। वो आगे जाके इसको महाप्रभु पूरा एक्सपोज करेंगे। फिर ये भाई पंडित ने सोचा यार क्या है ये व्यक्ति, बड़ा ही ये तो घमंडी बालक है, ये बड़ा घमंडी ब्राह्मण है, और एक ऐसा ना हो, एक इतना ये अग्रेसिव है कहीं मेरी पिटाई ना कर दे, है ना, इसे तो बच के रहना चाहिए। और बोले ये यार ये तो कहीं मेरी पिटाई ना कर दे, लेकिन मैं पिटाई की डर से थोड़ी है कि रोज मेरे पास आ रहा है, रोज ही मुझसे कुछ ले जाता है, मैं कब तक इसको रोज देता रहूंगा। बोले फिर भी चलो ये बल से छल से मुझसे कुछ ले जाता है तो ब्राह्मण, मेरा तो लाभ ही हो रहा है ना, कितना बड़ा हृदय श्रीधर जी का। रोज निमाई पंडित आते थे, रोज एक दो घंटा उससे बहस करते थे, उल्टी सीधी बहस करके रोज उससे मुफ्त का सामान ले जाते थे, और इतने अग्रेसिव होते थे। बोले कब तक ही करते, फिर बोले चलो कोई बात नहीं मेरा भला ही हो रहा है इससे, है ना। तो हमें यही सोचना चाहिए, कई बार भक्त लोग हमें बड़े इरिटेटिंग लग सकते हैं, ओहो फिर प्रभु जी दिख गए, फिर वही बात, फिर हमसे करेंगे, फिर वो करेंगे, लेकिन असल में क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, समझिए बात। ठीक है स्वयं गोसाई, जो चाहिए तुम ले जाओ, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा काला मोला खोला दिन जो भी लेना है आप ले जाओ, इसमें से जो केला दे रहा हूँ, केले के फूल दे रहा हूँ, कुछ डोने दे रहा हूँ, इसको ले जाओ। लेकिन निमाई पंडित ने जिद्दी थे, देखिए ठीक है तुम दे रहे हो अच्छे वाले देना, बढ़िया वाले देना। बोले ठीक है बढ़िया देंगे। और महाप्रभु जो श्रीधर से डोने ले आते थे, प्रतिदिन उन डोनों में वो खाते थे, बहुत प्रेम करते थे। और जो वो केले और केले के फूल ले जाते थे, प्रतिदिन उसकी सब्जी बना के खाते थे। और जो श्रीधर के छत के ऊपर सीताफल उगता था वो भी ले आते थे, और उसको घर में जाकर उसको काट के दूध में उसकी खीर बना के काली मिर्च डाल के उसको बड़े प्रेम से खाते थे। आप देखिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रेच, मुझे भोग लगाओ। लेकिन ये प्रेम की कितनी पराकाष्ठा है कि भक्त भगवान को भोग नहीं लगा रहा, भगवान खुद उसे घर में आ रहे हैं और जबरदस्ती छीन के ले आ रहे हैं, कितना प्रेम है ना। निमाई पंडित की जय, बड़े प्रेम से खाते थे। और फिर बोला ठीक है बढ़िया देना, बढ़िया देना, फिर भी नहीं जा रहे। बोले अब ये बताओ मैं हूं कौन, तब मैं घर चला जाऊंगा, छोड़ ही नहीं रहे। बोले अब कौन है तुम, तुम ब्राह्मण हो विष्णु के अंश हो? बोले नहीं गलत, मैं तो गोप हूं, मैं तो गोप वंश हूं। कहां से गोप वंश हो गए? तो मैं देख रहा हूँ तुम ब्राह्मण हो, बोले नहीं मैं तो ग्वाला हूँ। फिर बोले ठीक है, अब ये बताओ कि श्रीधर, बोलो प्रभु बोले श्रीधर, अच्छा श्रीधर अब मैं तुम्हें एक तत्व की बात बताता हूँ, बड़ा रहस्य, ये जो गंगा का महत्व है ना सब मेरे कारण है, गंगा मुझसे निकली है। श्रीधर ने बोला अरे भाई श्रीधर बाल, अरे नहीं माई पंडित कुछ तो डरो, गंगा को भी लपेट लिया आपने, गंगा को तो छोड़ दो, अब गंगा भी तुम्हारे से निकली है। सिद्धार्थ पंडित बोला मैंने लोगों को बड़े होते देखते हैं, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं ना वो धीर होते जाते हैं, लेकिन निमाई जैसे जैसे तुम बढ़ते हो जा रहे हो ना और शरारत होते जा रहे हो, चप्पले बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये इतना मधुर संबंध होता था श्रीधर पंडित और उनका, इस प्रकार से फिर निमाई पंडित घर वापस आते थे। और जब निमाई पंडित शाम को घर वापस आए तो उनके घर में सची माता के आंगन में एक विष्णु का मंदिर था। निमाई पंडित उस विष्णु मंदिर के द्वार पर बैठ गए और पूर्णिमा की रात थी और उन्होंने चंद्रमा को देखा। पूर्ण रूप से जब चंद्रमा को देखा निमाई पंडित के अंदर एक वृंदावन चंद्र का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने वंशी बजानी शुरू कर दी, बहुत ही सुंदर वंशी की ध्वनि। और ये वंशी की ध्वनि केवल सच्ची माता को सुनाई दे रही थी। और जब सच्ची माता ने ये वंशी की ध्वनि सुनी तो बड़ी चकित हो गई, ये वंशी की ध्वनि कहाँ से आ रही है, और वहीं पे वो मूर्छित हो गई। और दोबारा से उनको चेतना आई, फिर देखने लगी सुंदर वंशी की ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो ढूंढते ढूंढते गई उस विष्णु के मंदिर में, देखा ये निमाई पंडित बैठे वहां से वंशी की ध्वनि आ रही है। और उसके बाद निमाई ने देखा कि सच्ची माता आ गई है तो वंशी की ध्वनि बंद कर दी। इस प्रकार से कई लीलाएं निमाई पंडित करते थे सच्ची माता के आंगन में। एक बार सच्ची माता ने देखा कि चारों तरफ से बहुत सुंदर सुंदर गाने की नाचने की आवाज आ रही है, तरह तरह के संगीत के मृदंग वाद्य बज रहे हैं, जैसे कोई रासलीला चल रही हो। और कई बार सच्ची माता को दिखाई देता था बड़ी बड़ी सुंदर दिव्य स्त्रियां और उनके हाथ में कमल के फूल, जैसे साक्षात लक्ष्मियां हों। बढ़िया प्रकार से निमाई पंडित जी सच्ची माता के आंगन में कई लीलाएं करते थे। और फिर निमाई पंडित जब कई बारी अपने बालकों के साथ निकलते थे गंगा के तट पे, तो एक बार ये उनको शिवास ठाकुर दिखाई दे गए। तो शिवास ठाकुर सामने से आ रहे थे और निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ, जैसे हमने बताया पीछे शिष्य हैं और बड़े सुंदर निमाई लग रहे हैं और दोनों हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं, ऐसा देखकर शिवास ठाकुर जोर से हंस पड़े। बोले और उद्धतेर चुडामणि, यानी कि ओ घमंडियों में श्रेष्ठ, कुछ तो समझ लो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसे बड़े बड़े पोथियों को लेकर फायदा क्या, इन पोथियों का सार क्या है, भगवान की भक्ति, जल्दी से कृष्ण भक्ति में जुड़ जाओ, क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। जब ये शिवास ठाकुर कोई बहुत बड़े थे निमाई पंडित से, तो निमाई पंडित ने बुरा नहीं माना, मुस्कुराए, उनके चरणों को छुआ, बोलो निश्चित रूप से आपकी कृपा मिलेगी तो एक दिन मैं कृष्ण भक्ति में अवश्य आऊंगा, ये कहकर निमाई पंडित चले गए। और फिर वो अपने बालकों के साथ गंगा के तट पर बैठ गए। तो गंगा के तट पे जब चारों ओर से उनके छात्र उनको घेर के बैठ जाते थे, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते थे कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं, इतना सुंदर दृश्य होता था कि निमाई पंडित बीच में बैठे हैं और आसपास उनके छात्र बैठे हैं। तो बोले कैसे करोड़ों मुखों से भी मैं इसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। तो उनको कुछ तीन चार उपमाएं सामने आती हैं, क्या पहली उपमा कौन सी आ रही है? चंद्रमा की, कि निमाई चंद्रमा के समान है, आसपास सब तारे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कलंक है चंद्रमा में, एक तो कलंक है, दूसरा क्षय होता है, कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है। निमाई में कोई कलंक ही नहीं है और क्षय होने का तो मतलब ही नहीं है, सुंदरता तो निमाई की बढ़ती जा रही है, तो ये भी उपमा नहीं दे सकता। फिर लगता है कि बृहस्पति सामने बैठे हैं और आसपास सभी देवताओं ने घेरा हुआ है, ये उपमा ठीक है? नहीं, ये उपमा भी ठीक नहीं है। क्यों क्यों ठीक नहीं है? कि ये तो बृहस्पति जी तो केवल देवताओं के गुरु थे, असुरों के नहीं। निमाई ऐसा नहीं है, कोई पक्षपात नहीं, एक पक्ष के नहीं सभी के हैं वो, तो ये भी नहीं मैं बोल सकता। फिर ये दृष्टांत भी नहीं दे सकते। फिर तीसरी उपमा क्या आ रही है? कि स्वयं कामदेव बीच में बैठे हैं, तो ये उपमा कैसी है? मैं ये उपमा भी नहीं दे सकता। क्यों क्यों नहीं दे सकते? कामदेव के स्मरण से ही क्या होगा, हृदय क्षोभित हो जाता है, एजिटेट हो जाएगा, लेकिन इनको देखे तो मन शांत हो जाता है। तो कौन कौन सी तीन उपमाएं सोची थी इन्होंने? चंद्रमा की उपमा क्यों नहीं दे सकते? कलंक होता है और क्षय होता है। दूसरी उपमा कौन सी थी? बृहस्पति की उपमा क्यों नहीं दे सकते? पक्षपात करते हैं देवताओं से। तीसरी उपमा कौन सी सोची? कामदेव की। बोले ये हो नहीं सकता क्योंकि मन क्षोभित हो जाता है। फिर क्या उपमा हो सकती है ये? ये तो परम निर्मल, इसको देखे तो सुप्रसन्नचित हो जाता है। तो कौन सी उपमा होगी जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो बोले एक ही उपमा है, वो क्या है? वही है कि यमुना के तट पर कौन बैठे हैं? नंद कुमार बैठे हैं, और किन से घिरे हुए हैं? बिल्कुल यही तुलना सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यस, सही गोपा वृंदाले सही कृष्ण चंद्र मुझे द्विज रूपे गंगा तीरे करे गंगा। यही गोपवृंद है, यही कृष्ण है, गंगा के तट पर ये लीला कर रहे हैं। फिर वृंदावन ठाकुर जी अपने आप को प्रताड़ कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि मैं इतना पापिष्ट हूं कि मेरा जन्म उस समय नहीं हुआ और मैं इस सुंदर दृश्य का दर्शन नहीं कर पाया और इससे मैं वंचित हो गया। आप में से कितने लोग ये आशा करते हैं कि हम इस लीला का दर्शन कर पाए? निमाई पंडित बीच में बैठे हैं, आसपास सभी विद्यार्थी इनको घेर कर बैठे हैं, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। हे गौरचंद्र, मैं उस समय उपस्थित नहीं था कि मैं आपका साक्षात दर्शन कर पाता, लेकिन एक कृपा कर दीजिए गौरचंद्र कि लीला स्मृति हो जन्म जन्म, यही लीला जो मैंने श्रवण की है जन्मों जन्म तक मैं इसका स्मरण करता रहा हूं। ना और जब तुम नित्यानंद के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, अपने पार्षदों के साथ जहां जहां भी लीला करोगे तो मुझे भी अपना वृत्त, मुझ सेवक को भी अपने साथ ले जाइए, मैं उस लीला में भाग ले सकूं। है ना, कितनी सुंदर भावना है वृंदावन दास ठाकुर जी के। तो इसके साथ ये भी हमारी भावना होनी चाहिए कि ये इस लीला का हम स्मरण करते रहें और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी लीला कर रहे हों उस लीला में हम भाग ले सकें। तो आज के दिन हमने चर्चा की कैसे निमाई पंडित का विद्या विलास चल रहा है और कैसे निमाई पंडित उद्धतेर शिरोमणि, उद्धतेर का अर्थ होता है दिखने में बहुत घमंडी है लेकिन वो जबरदस्ती किसी से सेवा ले रहे हैं उस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, है ना। तो भक्त लोग भी कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भक्त लोग ऐसा करते हैं। और देखा किस प्रकार से निमाई पंडित पूरे नवद्वीप में गए, अलग अलग लोगों से जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी, उनका उद्धार किया, और किस प्रकार से निमाई पंडित के लिए भक्तों ने प्रार्थना की, और किस प्रकार से निमाई पंडित ने अपने प्रेम के भाव भी दिखाए जिनको आम लोगों ने समझा कि ये वायु का रोग है, और किस प्रकार से निमाई पंडित ने सच्ची माता के आंगन में अपने वृंदावन चंद्र की भी लीला दिखाई। तो कल हम और चर्चा करेंगे कैसे निमाई पंडित केशव कश्मीर एक दिग्विजय पंडित को हराते हैं, कैसे फिर निमाई पंडित पूर्वी बंगाल में जाते हैं तो उनके विरह में उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया शरीर छोड़ती है, और फिर कैसे वो विष्णु प्रिया जी से विवाह करते हैं, ये कल के दिन चर्चा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गौर पूर्णिमा महा महोत्सव के, गौरांग महाप्रभु के, निमाई पंडित के, उदय गोर प्रेमानंदे। अगर आप सबको कथा में आनंद आया है तो जोर से क्या बोलेंगे? आनंद नहीं आया इसका मतलब अभी भी नहीं आया, ये आनंद बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए। जय गौरांग का नाम लेंगे तो क्या होगा? हृदय में प्रेम होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं हरे कृष्णा।
प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।